There is no power on earth that can undo Pakistan.
I love the Muslims. I think they're great people.
Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me,
Assalamu alaikum to my fellow humans and machines. Welcome to Podcast Chalk. Hamari aaj ki episode hai season 4 episode 6 aur main hu Saad / Morpheus aur aaj ka hamara ek unique aur kafi exciting panel hai hamara host number 1 Taimur
/ Neo
/ Neo. Neo pick kar liya pehle
yaar ye zyada
pehle Neo pehli baar
host number 2
Bilal Vietnamese Neo.
ठीक है.
नहीं 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 ये नहीं है क्या इसकी साइफर है.
नहीं यूनिवर्सल यूनिवर्सल हमारा यूनिवर्सल मैट्रिक्स है हर कंट्री का अलग मैट्रिक्स ही चल रहा है.
साइफर है बिलाल मुझे साइफर बना
दे. और हमारे होस्ट नंबर 3 ताहा /
दी आर्किटेक्ट.
दी आर्किटेक्ट ये मतलब मशीन को भी हमने लाइन में लिया हुआ है. ठीक है तो आज की हम एपिसोड क्योंकि मैट्रिक्स 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और पूरी दुनिया मैट्रिक्स पे बात कर रही हो. मैट्रिक्स मूवी एज अ फलसफा भी निकल आया है कि क्या चल रहा है. तो आज हमने सोचा हम डिस्कशन करते हैं मैट्रिक्स
और आपने मॉर्फियस का रोल लेकर यू विल टेक अस डाउन द रैबिट होल एंड सी हाउ डीप इट गोज.
कितने लोगों को मैं निकाल सकता हूँ उनकी गफलत वाली जिंदगी से देखते हैं. तो ये जो मूवी थी मैट्रिक्स 1999 में निकली थी और किसी को आइडिया नहीं था क्या होगा मूवी में. एक्शन मूवी लग रही थी और फिर जब वो मूवी रिलीज़ हुई उसके बाद जो उसकी डिस्कशन हुई उसके ऊपर कॉमिक्स बने उसके ऊपर गेम्स आई फिर ट्रिलॉजी बनी और एक जिसे कहेंगे ना पॉप कल्चर रेफरेंस का बहुत बड़ा
एक Was it always planned as a trilogy? मुझे नहीं पता क्या ट्रिलॉजी ही के तौर पे प्लान थी.
I don't think so. मेरा ख्याल है I would say 99% जो trilogies होती हैं वो कभी planned नहीं होती
क्योंकि 2 और 3 एक ही साल निकली थी 2002 में
और 2 और 3 shoot भी
एक साथ हो गई थी. इतना बड़ा इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी थी कि उन्होंने कहा 2 3 एक साथ निकालेंगे
और ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने जबरदस्ती की कोई स्टोरी खींची है. यानी उन्होंने जो बिल्ड किया था 1 के अंदर वो 2 और 3 के अंदर लोगों को पसंद नहीं आती 2 और 3. यानी जो 1 के अंदर जो उन्होंने जो चीज़ें जो स्टोरी बनाई थी उसी के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा बिल्ड किया था.
एक्चुअली इस मूवी का सक्सेस इतना बड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने कियानो रीव्स को एक परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफर किया था मूवी ज्वाइन करने के लिए जिसकी वजह से वो एक ही मूवी में तुक्के में 100 मिलियनेयर बन गया
और वो काफी डोनेट कर चुके हैं सीजीआई टीम को.
और अब आप पिक्चर नहीं कर सकते कियानो रीव्स के अलावा. ये मूवी ओरिजिनली जब उन्होंने लिखी थी ये मूवी तो उन्होंने सोचा था विल स्मिथ को देंगे. विल स्मिथ ने कोई और बेकार मूवी जाकर
टॉम हैंक्स को भी ऑफर की थी. मैंने
आप ये देखेंगे विल स्मिथ इतना कैरिश्मेटिक एक्टर है और कियानो रीव्स इतना पेल सा मैं कहूंगा एक्टर है वन डायमेंशनल. लेकिन उस वो कैरेक्टर इस तरह बन गया है कि अब उसको एज अ कैरिस्मेटिक हीरो हम नहीं इमेजिन कर सकते नियो को.
आई गेस एक इमोशनलेस एक्टर जो है ना वो इसके लिए चाहिए था.
हाँ ये तुक्का लग गया उनका
तुक्का लग गया एग्जैक्टली.
स्क्रिप्ट भी अच्छी हो गई
यानी कोल्ड पर्सोना किस्म का. लेकिन अब उसने वही पर्सोना अब कहें कि जॉन विक के अंदर भी काफी हद तक लेकर गया और वो जॉन विक भी मशहूर हुई.
अब आप कोई और जो है
अब मैट्रिक्स 4 भी आएगी जिसके अंदर मुझे ट्रेलर से मैट्रिक्स 4 के नियो के अंदर ज्यादा
जॉन विक
इमोशन नजर आ रहे थे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर.
जॉन विक में जो है मॉर्फियस भी तो आ जाता है उसके साथ.
हाँ
पार्ट 2 के अंदर.
पार्ट 2 के अंदर
खैर मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था कि पहली मूवी में दिखाते हैं कि एक आदमी होता है हैकर होता है सवाल पूछ रहा होता है इंटरनेट पे कि क्या है ये मैट्रिक्स क्या है क्या मेरा ड्रीम रियलिटी है ये रियलिटी ड्रीम है. वो कंफ्यूज होता है और फिर पता चलता है एक टीम होती है बाहर जो उसको ट्रैक कर रही होती है कि ही माइट बी द वन. अब वन क्या है वो एक प्रोफेसी है उसकी. बेसिकली ये समरी है कि इसकी मैट्रिक्स की अगर हम बैक स्टोरी देखें तो आप वर्ल्ड इमेजिन करें जैसे आई रोबोट विल स्मिथ की थी कि हर जगह आपके साथ मशीन्स हैं आपके असिस्टेंस के लिए. तो वहाँ पर एक घर के अंदर एक मास्टर हम बोलेंगे इंसान को अब्यूज़ कर रहा था मशीन को मारता था और उसको मारने वाला था. तो सेल्फ डिफेंस में उस मशीन ने पहली बार वो लॉ तोड़ा है और उसने पूरी फैमिली को मार दिया अपनी सेल्फ डिफेंस के. वो केस गया अदालत में कोई आपका इसके बारे में रूल नहीं था, तो आपने मशीन की बात ही नहीं सुनी और जितनी भी उस मॉडल के जितने मशीन थे आपने डिसमेंबर करके उसको स्क्रैप कर दिए। तो मशीन्स के प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हुआ कि ये क्या हुआ है, और फिर लोगों ने फिर उनको मारना शुरू किया, और फिर मशीन्स ने कहा कि हम इंसानों के साथ नहीं रह सकते, तो वो डेजर्ट में कहीं जाके उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन शुरू कर दी। कुछ साल और बढ़े, मशीन्स की प्रोडक्टिविटी इंसान से बेहतर थी, उन्होंने चिप्स विप्स जितनी भी थी दुनिया में टेक्नोलॉजी मशीन प्रोवाइड करे थे और इंसान करेंसी में डील करते थे, तो मशीन्स की करेंसी अप होना शुरू हो गई और ह्यूमन इकोनॉमी डाउन होने शुरू हो गई। उसके कई अरसे बाद वो लोग मशीन यूएन के अंदर जाती है, इंसान को बोलती है कि हम आपके ज़्यादातर मसले हल कर सकते हैं, बस हमें इक्वली ट्रीट करें इंसान के तरह, जैसे इंसान के राइट्स हमारे भी राइट्स होने चाहिए। अब वहीं यूएन के अंदर मशीन को वो लोग मार देते हैं, मैसेकर कर लेते हैं, क्रूसीफाई कर देते हैं, और फैसला करते हैं बहुत ज़्यादा आगे निकल के इनको न्यूक करते हैं। अब वो मशीन को न्यूक करते हैं, उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको जो है रेडियो एक्टिव मैटर्स उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो वापस रिटेलिएट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन सिटीज गिरना शुरू हो जाती हैं। फिर इंसान के पास एक और ब्रिलियंट आइडिया होता है कि क्योंकि सोलर पावर्ड है तो हम जो है पूरी दुनिया से सन ब्लॉक कर देते हैं, एटमॉस्फेयर पे काला धुआं छोड़ देते हैं, बैकफायर कर जाता है, जाहिर सी बात है वेजिटेशन खत्म हो जाए, फेमन हो जाता है, और जो है मशीन और हावी हो जाती है। अब मशीन बीच फेस में क्योंकि ह्यूमन सोल्जर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कहते हैं कि हम पावर इनसे ले सकते हैं, तो इनके सेल्स बनाने शुरू करते हैं, इंसान को एक पॉट के अंदर रखते हैं
पावर सोर्स के तौर पर,
पावर सोर्स के तौर पे, कि उनको यहीं पर जिंदा रखेंगे, इनके कॉन्शियसनेस हम एक सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल देंगे और इनको न्यूट्रिएंट्स हम फीड करते रहेंगे, जैसे माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है, समझे पूरी लाइफ साइकिल इसके अंदर चले जाएगी। तो यहाँ से जो है ह्यूमन कैप्टिविटी शुरू हो जाती है और हम एंटर होते हैं मैट्रिक्स पे। अब जो ये मैट्रिक्स है ये है आपका 6th वर्जन मेरे ख्याल से,
जो हम मूवी देखे
जो मूवी, क्योंकि शुरू में
6th या 7th
6th
6th
क्योंकि शुरू में जब मशीन ने प्रोग्राम बनाया तो ह्यूमन माइंड कंपेटेबल नहीं था उस प्रोग्राम की तरफ से, क्योंकि पहले समझे उन्होंने जो सिमुलेशन चलाई थी वो थी जन्नत, सबके पास सब कुछ है, तो उन्होंने देखा इंसान को जब तक आप एक अमीर को गरीब नहीं दिखाएंगे तो उसको अमीर होने का फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, इंसान को कंपेटेटिव रहना है, तो वो फेल कर गया था पूरा मैटर्स क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी उधर कोई। फिर उन्होंने कहा इंसान को किस
यानी
तरह,
उन्होंने कहा कि इंसान यूटोपिया में कभी खुश नहीं रहेगा, वो ज़बरदस्ती उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा,
जब तक स्ट्रगल नहीं होगी कोई इंसान, अगर आप इंसान की स्ट्रगल छीन लें इंसान सुसाइड कर लेगा।
यानी आपको जेनेटर्स चाहिए, आपको लेबर चाहिए, हर तरह की तबका चाहिए, और इनक्वालिटी जब तक नहीं होगी वो
इसको क्वेश्चन करूंगा मैं, यानी इसको यानी क्यों, मुझे 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 वजह नहीं समझ में आ रही, यानी अगर हम
देखिए खूबसूरत होने के लिए किसी को बदसूरत होना जरूरी है,
इसका बायोलॉजिकल जवाब भी है कि इंसान की खुशी के लिए जो दो चार केमिकल्स होते हैं दिमाग में,
डोपामिन
सेरोटोनिन डोपामिन, उनमें से जो सेरोटोनिन है वो अचीवमेंट पे रिलीज होता है, और अचीवमेंट हमेशा दूसरों से कंपेरेटिव होती है, तो हो सकता है आपका ह्यूमन कनेक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो, कोई नया स्टिम्यूलस है डोपामिन हो, लेकिन आपका सेरोटोनिन रिलीज नहीं होगा अनलेस आप देखेंगे कि मैंने कुछ अचीव किया है कंपेयर टू अदर ह्यूमंस। अब ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, इसे अवॉइड करना इस दुनिया में मुश्किल है।
तो लेकिन तो फिर मिसाल के तौर पर अगर मैं, मुझे नहीं पता है बायोलॉजी इस हवाले से, ये होता है कि जो लोग डोपामिन एडिक्ट होते हैं तो उनको ज़्यादा बड़ा डोज ऑफ डोपामिन चाहिए होता है उसको करने के लिए, तो और वो डोपामिन एडिक्शन के हवाले से जितना भी मैंने पढ़ा गया कि किसी ने अपनी कोई हो गया जो डोपामिन एडिक्ट, बट एनी एडिक्ट इज मोर और लेस अ डोपामिन एडिक्ट जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, तो उसको अगर कंट्रोल करनी तो वो यही करते हैं कि क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर इतने जब डोपामिन इतना ज़्यादा होता है तो रेगुलेट करने के लिए ना तो रिसेप्टर्स डोपामिन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि डोपामिन इतना छूट रहा है उसका इफेक्ट इतना हो रहा है तो रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं ताकि वो ज़्यादा डोपामीन को का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना ले सके, यानी रेगुलेट करने के लिए। तो अब ये कि इंसान उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, यानी जो उसको एड्स एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए कि अब आप अपनी डोपामीन कम करना लगें ताकि आपकी ब्रेन के अंदर ना वापस रिसेप्टर्स वो डोपामीन रिसेप्टर्स बढ़ाना शुरू कर दे और आप अपनी जो डोपामीन डोज है वो कम करना शुरू करते हैं, जो भी एक्टिविटी जिससे आपको डोपामीन
बढ़ाएं एक्चुअली
नहीं डोपामीन कम करें और रिसेप्टर्स बढ़ते रहें ताकि आपका थोड़े से डोपामीन के अंदर ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे तो वो ज्यादा एक होगा, यानी कुछ इस तरह की। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ सेरोटोनिन से जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस तरह काम करता है, यानी अगर क्या ह्यूमैनिटी इस तरह इवॉल्व नहीं कर सकती थी
देखे,
मैट्रिक्स देखे, दुनिया
आप,
के अंदर
आप अगर अच्छे,
कि वो अपने रिसेप्टर्स बढ़ा देती या कुछ
सिमिलर ही होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक विथड्रॉल पीरियड नहीं होगा जब आप अपना सेरोटोनिन कम करने की कोशिश करेंगे ताकि रिसेप्टर्स बढ़े।
नहीं देखे आप अगर
विथड्रॉल सिम्टम्स भी होते
हैं, अगर आप कल हमारी सबकी जिंदगी में से
स्ट्रगल हट
जाए, कंपैरेटिव स्ट्रगल और अचीवमेंट निकाल दें,
मैं तो बहुत खुश हूँ। लाइफ
का पर्पस खत्म हो गया ना, लाइफ का पर्पस खत्म हो गया,
फोर्स करें पर्पस खत्म ही कर देते हैं, फोर्स करें आप स्ट्रगल निकाल देते हैं, हर बंदे को आप इक्वल पैसे दे देते हैं, फोर्स करें। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि ह्यूमन ह्यूमैनिटी एज ए स्पीशीज जो है वो हायरार्की के बगैर काम करे, और अगर हायरार्की है तो उसका मतलब इनइक्वालिटी है, तो देन अगेन एक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तो डेफिनेटली होगी। और अगर मैं एज एन एग्जाम्पल आप ये देखें कि आज के ज़माने में अगर दुनिया के सारे पैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली, तो शायद हर बंदे के पास शायद $40,000 आए, तो हर बंदा इस पर कंटेंट नहीं है। यानी देखिए जो इससे ज़्यादा कमाते हैं वो चाहते हैं कि, और एक एम्बिशन होती है कि आप एक मिलियन चाहते हैं, एक बिलियन चाहते हैं, तो क्या आप खुश हैं कि हर बंदे के पास $40,000 हो? यानी जस्ट
अगर थोड़ा ज़्यादा ये कम्युनिस्ट किस्म क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हर कोई हर किसी की जरूरियात भी पूरी हो रही है और ख्वाहिशात भी पूरी हो रही है, यानी ये तो इस तरह की दुनिया बना
लेकिन लेकिन आप स्पेशल नहीं हुए ना, आप स्पेशल नहीं हुए
पहले तो, यानी फिर ये तो ये कि कुछ जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं बहुत ही अनएम्बिशियस किस्म का इंसान हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, यानी मेरा पेट भर रहा है बैठे बैठे, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, तो मैं तो नहीं स्ट्रगल करूँगा, ना मैं मैट्रिक्स तोड़कर बाहर निकलूँगा। तो उस मशीन को बजाय से कि पूरा मैट्रिक्स को ख़त्म करने के बजाय और नया मैट्रिक्स यानी यूटोपिया हटाने के बजाय उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि ये लोग जो कि ज्यादा एम्बिशियस है उनको
99% ऑफ द पॉपुलेशन है,
नहीं है 99% ऑफ द पॉपुलेशन, होगी 60% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है।
बात यह है कि 50s के अंदर से अगर आप कंपेयर करें अभी दुनिया को, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे
बढ़ती गए
तकरीबन कोई भी नहीं है अब दुनिया में, एटलीस्ट द मॉडर्न वर्ल्ड में, अफ्रीका सबसे हैरान अफ्रीका वगैरह में, पाकिस्तान इंडिया में लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका में यूरोप में लोग कंप्लेन करते हैं इनइक्वालिटी के बेसिस पे, जबकि उनका जो गरीब बंदा भी होता है वो हमारा गरीब बंदा नहीं होता, सिर्फ इनइक्वालिटी पे इतनी ज़्यादा कंप्लेनिंग होती है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिस्ट यूटोपिया होता 50 साल पहले, तो अब जो बंदा अपना आईफोन जेब में रख के कंप्लेन कर रहे हैं ना कि मेरे साथ वाले के पास एक गोल्डन मैक्लारेन है, उसकी भी जेब में वो आईफोन ना होता, टेबल पर खाना ना होता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने इन्हीं मोटिवेशन की वजह से वो टेक्नोलॉजीज बनाई हैं जिससे ज्यादा खाना आएगा।
नहीं, वो तो ह्यूमन नेचर तो है, मैं ह्यूमन नेचर की को डिनाई नहीं कर रहा है कि ह्यूमन नेचर तो है, मैं कह रहा हूँ कि मशीन ने उसको काउंटर करने के लिए ये तरीके क्यों नहीं अख्तियार किया।
मैं मशीन से पहले बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ह्यूमन नेचर नेसेसरी भी है ह्यूमंस के फ्लरिशिंग के लिए।
ठीक है,
ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करना छोड़ देता था अगर उसको पता चलता था वो सिमुलेशन के अंदर रह रहा है, मतलब इंसान पॉड के अंदर मर जाता, उसका दिमाग कोलैप्स कर जाता।
मेरे ख्याल से या तो डिप्रेशन में ही जाएगा, यानी वो डिप्रेशन में गया तो
मतलब दो सिस्टम कंपेटेबल नहीं समझा आपने, किसी हाई वोल्टेज के अंदर आपने प्लग के अंदर आपने लो वोल्टेज स्विच डाल दी वो फट जाएगा, तो इंसान का जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था वो कंपेटेबल बनाना था इंसान के दिमाग के उसके, कि उसको पता नहीं चले कि वो सिमुलेशन में रह रहा है। तो उसके लिए दूसरे वर्जन में उन्होंने क्या किया, एक जो कैरेक्टर नजर आता है ओरेकल, ओरेकल का काम ही केओस पैदा करना था, क्योंकि इंसान उस वक्त तक सिमुलेशन नहीं को सिमुलेशन समझेगा जब तक उसको पता होगा कि चॉइस नहीं है उसके पास। इवन आप उसको इल्यूजन ऑफ चॉइस देंगे तो वो आराम से वो जो है गुलामी की ज़िंदगी गुजारता रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा, उसको एक होप होगी कि उसके पास एक चॉइस है। सेकेंड उसमें ये हुआ मैट्रिक्स में, तो उससे क्या हुआ काफ़ी, क्योंकि चॉइस हुई तो केओस ज़्यादा हो गया था, सब कुछ आप मैनेज नहीं कर सकते थे, तो जितने भी प्रोग्राम्स चॉइस के खिलाफ जाते थे जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते वो एक जगह कलेक्ट करते थे सारी एनोमलीज, और वो कलेक्ट होकर हाँ एक बंदे के अंदर आती थी, वो होता न्यू। अब न्यू के अंदर जो कोड आता था वो सोर्स से आता था, वो मैट्रिक्स के अंदर रूल्स बेंड कर सकता था, वो सुपरमैन बन के घूम सकता था, वो किसी चीज़ को भी वो चाहे तो चुटकी बजाय दुनिया ख़त्म कर दे वो कर सकता था।
नहीं नहीं मैंने एक सेकेंड, वो जो प्रोग्राम्स जो कि ज़रूरत नहीं रहते थे या अपनी या वो मैट्रिक्स के मुताबिक नहीं चल रहे होते थे उनको वो डिलीट कर देते।
नहीं वो तो
ये जो नियो वाला जो था कि ये खुद ही क्योंकि उस कोड के अंदर एक एनोमली क्रिएट करना पड़ा या हो गया वो जिसको अभी तक वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रही थी मशीन के ये क्यों क्रिएट हो रहा है।
नियो को आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एनोमलीज, वो तो दूसरे जो प्रोग्राम है जैसे ये बिल्डिंग नहीं चाहिए या इस बिल्डिंग में ये बिल्ली नहीं चाहिए वो प्रोग्राम डिलीट कर दिया। लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग ट्री है ना इनका, उसमें जो इनको ये मशीन को समझ आया, वो एक ही जगह रूट करके कि वो नियो के अंदर डाल देंगे, और फिर नियो को जो इल्यूजन ऑफ चॉइस देते थे कि उसको एंड में हमेशा वो आर्टिटेक्ट के पास जाता था, आर्टिटेक्ट उसको बोलता था या तो अपना लव बचाओ या ह्यूमैनिटी बचाओ, दो दरवाजे देता था, तो हमेशा नियो ह्यूमैनिटी बचाता था, क्योंकि ज़ायोन एक शहर है जो मतलब जहाँ पर लास्ट ह्यूमन स्टैंड है मशीन के अगेंस्ट, जब वॉर हुई है वहाँ पर मशीन अटैक कर रही होती थी और उनको होप होती थी कि नई प्रोफेसी आएगी बंदा मशीन को डिफीट कर देगा, लेकिन ये सब इल्यूजन था, हर बार ज़ायोन डिफीट होता था, न्यू सेलेक्ट करता था ह्यूमैनिटी को, तो जब वो सेलेक्ट करता था पूरे वो एनोमली लेके वापस कोर्ट के अंदर डालता था, फिर प्रोग्राम रीराइट होता था, बेटर वर्जन बन के निकलता था और फिर नया मैट्रिक्स निकलता था, तो इस तरह चार मैट्रिक्स हो गए थे, और जब भी ज़ायोन जो है वो तबाह होता था कोई सात मर्द और 14 औरतें डाल देते थे,
नियो को ही चॉइस दी जाती थी कि सात मर्द सेलेक्ट करो और 14 औरतें सेलेक्ट करो
ताकि रिपॉपुलेट करें अर्थ को, ताकि बैटरीज दोबारा बने और वो करें, तो इस तरह काफी अरसे चलता आ रहा था। ये जो हम मैट्रिक्स देख रहे हैं इसमें पहली बार नियो इंसानियत को चूज नहीं करता, लव को चूज करता है, तो मशीन को समझ में नहीं आता हुआ क्या है, ये तो आउटराइट वॉर हो गई मशीन का, वापस दोबारा
लव कब चूज किया उसने,
ट्रिनिटी इसका लव जो इंटरेस्ट होता है ट्रिनिटी, वो मर जाती है, उसको बचाने के लिए वापस जाता है, दूसरी चॉइस लेता है जो कि कभी मशीन ने सोचा भी नहीं था ये लेगा, क्योंकि इल्यूजन ऑफ चॉइस थी, लेकिन पहली बार असल चॉइस उसने ले ली थी, तो वहाँ से अब यहाँ पर क्योंकि ये एनोमली है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक एंटीवायरस टाइप चीज़ डाली थी मशीन के अंदर, जिसको हम एजेंट्स बोलते हैं, उनमें से एक एजेंट था स्मिथ।
एजेंट्स बेसिकली वो होते हैं जगह जो भी मैट्रिक्स के प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट जा रहा होता है ना, वो उसको जाकर कंट्रोल करते हैं, यानी उसको पकड़ते हैं और डिलीट करते हैं, यानी ये एजेंट से काम होता है, एक प्रोग्राम है एंटीवायरस,
एंटीरूटर प्रोग्राम है।
तो जब नियो हरा देता है एजेंट स्मिथ को, उसके अंदर से घुस के जब वो फाड़ता है उसको, तो स्मिथ की प्रोग्रामिंग के अंदर नियो की प्रोग्रामिंग चली जाती है, मतलब कि अब स्मिथ भी चीज़ें बैंड कर सकता है,
और स्मिथ को ये होता है कि डिलीटेड प्रोग्राम्स को एक जगह दाना डाल कर वो हटा देते हैं, कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रिजिस्ट कर जाते हैं, यानी कुछ के अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो डिलीट होना अपने आप को रिजिस्ट कर देता है, तो एजेंट स्मिथ के अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है, वो अपने आप को फ्री कर लेता है बिल्कुल अपनी मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग से, अब वो बिल्कुल एक आज़ाद प्रोग्राम है जो कि ऑपरेट कर रहा है।
अब मैट्रिक्स में भी ये समझाते हैं कि जो बहुत सब प्रोग्राम डिलीट नहीं होना चाहते, तो वो कोशिश करते हैं बचने की, छुपने की, भागने की,
तो वो ट्रेन ट्रेन कीपर या क्या क्या नाम
आर्किटेक्ट जो है,
नहीं वो एक ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं ना, जैसे
ट्रेन वो तो ट्रेन वो तो आर्किटेक्ट का ही बंदा है, उसको आप समझे यूएसबी की तरह के जो प्रोग्राम इधर
द फ्रेंचमैन।
अब फ्रेंचमैन क्या है, वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मैट्रिक्स डिलीट करना चाह रही थी लेकिन वो छुप गया था, अब क्योंकि वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उसके पास टूल्स वूल्स थे रूल्स बेंड करने के, तो वो चीज़ें स्मगल करता था, पुराने जितने भी डिलीट होने वाले प्रोग्राम होते अपने कल्ट में डाल देता था, ग्रुप में डाल देता था, फिर अपनी एक अंडरवर्ल्ड दुनिया चलाता था, तो मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इतना पावरफुल हो चुका है कि वो रिजिस्ट कर रहा है मशीन को। अब आयरनी इसमें ही क्या है कि जो ये मशीन ने पूरा सिमुलेशन बनाई, क्यों बनाई, मशीन को इंसान से आज़ादी चाहिए थी, मशीन के अंदर कॉन्शियसनेस जाग गई थी, अब मशीन के सिमुलेशन के अंदर जो आपने एंटीवायरस डाला है उसके अंदर जो एजेंट्स पेड है उसके अंदर कॉन्शियसनेस जा गई, अब वो मशीन को हराना चाह रहा है कि मशीन की बाउंड्रीज के अंदर मैं क्यों ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए, तो एक बहुत बड़ी साइकिल बनती जा रही है कि मतलब कॉन्शियसनेस आप एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं उसकी कॉन्शियसनेस जाग रही है, फिर वो चीज़ क्रिएट कर रही है उसकी कॉन्शियसनेस वो रिवॉल्व कर रही है आपसे, तो ये बेसिकली समरी है उसकी,
और ये सारा कुछ फिलोसॉफिकली पॉसिबल नहीं है।
हाँ, यानी उसके अंदर भी काफ़ी फिलोसफी इस तरह से आती है कि जो आखिरी जो लड़ाई होती है वो बेसिकली एजेंट्स में वो अगर सीन तुम लोगों ने अभी पार्ट वन देखी है तो वो जो मॉर्फियस के साथ जो उसकी डिस्कशन चल रही होती है कि इंसान क्या है और ये एक वायरस की तरह है और ब्रीड करता है रैबिट्स की तरह और फैलता रहता है, मैं जो चाह रहा हूँ, और वो खुद अपना भी वो जो प्रोग्राम होता है वो कहता है मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, मैं निकलना चाह रहा हूँ इस मैट्रिक्स से, जो कि वो निकल जाता है पार्ट टू के अंदर, वो दिखाते हुए निकल जाता है थ्री के अंदर, तो थ्री के एंड के अंदर भी लड़ाई के अंदर वो ये कहता है कि वो अब वो यानी सवाल ये पैदा होता है कि एक मशीन, हम यही डिस्कस कर रहे थे साधो में, जो मेरे ख्याल से तुम लोग चिप इन कर सकते हो, कि वो एक AI जब इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर ले तो वॉट इज़ हाउ इज़ इट गोइंग टू डिफाइन इट्स पर्पस, ठीक है, यानी एक इंसान को चलो अगर आप थियस्टिक अगर फिलोसफी या वर्ल्ड व्यू के ऊपर भी बिलीव नहीं करते तो वो कुछ आता कि यू गिव योर सेल्फ पर्पस या जो भी, लेकिन मैं अज्यूमिंग के जो नॉर्म है वो थियस्टिक वर्ल्ड व्यू ही है और उसके अंदर यही है कि खुदा ने आपको एक पर्पस के साथ दुनिया के अंदर भेजा है, तो हम वहाँ से अपना पर्पस डिराइव करते हैं और यही डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू है, तो मशीन अपना वर्ल्ड अपना पर्पस कहां से डिराइव कर रही है?
इस सवाल से पहले एक सवाल ये बनता है कि क्या एआई कॉन्शियसनेस अचीव कर सकता है कि नहीं?
ये
जिसका जिसको काफी डिस्कस किया गया है फिलोसॉफिकल लिटरेचर वगैरह में भी, और आजकल का एक रेलेवेंट सवाल है. और अनलेस आपका एक फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म स्टार्टिंग पॉइंट हो, डिफॉल्ट आंसर यह है कि मशीन्स कॉन्शियसनेस अचीव नहीं कर सकती. तो ये रिचर्ड डॉकिंस का मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि बिकॉज आई एम अ फिलोसॉफिकल नेचुरलिस्ट, यानी कि मैं बिलीव करता हूँ नेचर के अलावा कुछ नहीं है, आई एम कमिटेड टू द व्यू दैट द ह्यूमन ब्रेन इज नथिंग बट केमिकल प्रोसेसेस फिजिकल मैटर दैट शुड बी रेप्लिकेबल एल्सवेयर. तो उन्हें ये बिलीव करना पड़ता है कि कॉन्शियसनेस इंसानों से बाहर या लिविंग थिंग से बाहर हो सकती है, जबकि फिलोसॉफिकली ये एक इनकोहेरेंट आर्ग्यूमेंट है. इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन
एक एग्जांपल भी थी ना,
कॉन्शियसनेस को इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस में ले आते हैं. वो कहते हैं कि एक दिमाग जो है वो एक सेकंड के अंदर 100 मिलियन बिलियन ऑपरेशंस करता है, और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं अगर हम देखें कि 5 GHz उसकी लेट्स से फ्रीक्वेंसी है, तो उसका मतलब है कि वो 5 बिलियन ऑपरेशंस करेगा ना सेकंड.
लेकिन
तो वो अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो कि हम
प्रोसेसर हमारे पास बहुत स्ट्रांग
हो, एबिलिटी हमारी इतनी ज्यादा, कंप्यूटिंग पावर इतनी ज्यादा हो, तो हम हाइपोथेटिकली उसको कर सकते हैं. और वो जो एआई की एक ब्रांच है न्यूरल नेटवर्क्स, वो यही कोशिश करती है कि दिमाग के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको मैप किया जाए और उन्हें समाओ सिमुलेट करें कि वो उसी तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करें, उसी तरीके से काम करें और एक तरीके से इम्यूलेट करना शुरू करें.
इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं जो कॉन्शियसनेस की जनरल डेफिनेशन में आमतौर पर आते हैं. पहला है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव कॉन्शियस स्टेट्स. अब ये तो हम प्रूव नहीं कर सकते रोबोट्स के बारे में, क्या मैं ये नहीं प्रूव कर सकता कि 7 भाई के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव कॉन्शियस स्टेट्स हैं. मुझे बस ये पता है कि मेरे हैं, कि मैं कमरे में हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ फील कर रहा हूँ. लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जिसे कहते हैं इंटेंशनैलिटी, जो ये है कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग टू बी ऑफ एंड अबाउट समथिंग. तो मुझे पता है कि जब मैं कहता हूँ कि 7 भाई ने एक ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, ये एक स्टेटमेंट 7 भाई के बारे में है और 7 भाई एक इंसान है. जब ये चीज़ कंप्यूटर कहता है, क्या उसे पता है कि इस सेट ऑफ सिंबल्स जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग क्या है? फैक्चुअली इसका आंसर यह है कि कंप्यूटर को नहीं पता. ये नहीं है कि हम कह नहीं सकते,
हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं,
सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं पता.
कंप्यूटर वही बता रहा है जो प्रोग्राम्ड है बताने.
क्या मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ,
मेरा एक सवाल है, क्या सर्टेनिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जो मैं तुमने कहा कि 7 भाई के एक इंसान है और वो एक ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए, क्या मैं सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो इंसान की डेफिनेशन है और ग्रीन शर्ट है वो वही है? क्या वो उसकी कोई मीनिंग
नहीं? आप ये लेकिन ये पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि आप ग्रीन शर्ट आपने पहनी हुई है, ग्रीन की डेफिनेशन मेरी आपसे डिफरेंट हो, 7 भाई की डेफिनेशन डिफरेंट हो, मैंने इस स्टेटमेंट के साथ एक मीनिंग असाइन की अपने दिमाग में. इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट इज ऑफ एंड अबाउट समथिंग अदर देन माई सेल्फ.
सही है.
अगर एक कंप्यूटर हो, आप फर्ज करें कि मैं एक सेंसर बनाऊँ जो लाइट सेंसर है, ठीक है, और वो उसको मैं सनसेट के सामने डाल दूं और उसकी प्रोग्रामिंग ये हो कि जब सनसेट जितनी रोशनी अंदर आएगी ना तो आवाज़ निकालेगा वाओ, क्या आप उस मशीन को देखेंगे, आप कहेंगे कि ये सनसेट को रिकग्नाइज करती है, असाइंस मीनिंग टू सनसेट्स? नहीं. अगर मैं उस रोबोट को एक ह्यूमनॉइड फिगर दे दूँ ना, तो आज इंसान कहने लग जाएंगे कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गया है और ये अब सनसेट्स रिकग्नाइज कर रहा है. तो एसेंशियल क्वेश्चन जो है वो सिमेंटिक्स वर्सेज सिंटैक्स है. Computers only deal with syntax, zeros and ones, symbols. और दोनों के बीच में एक hard line है जिसे cross नहीं किया जा सकता. तो इसकी एक मिसाल है जो मैं पिछले हफ्ते आप लोगों से डिस्कस कर रहा था. एक प्रोफेसर जॉन सेल्स ने एग्जाम्पल दी थी जिसे कहते हैं Chinese room thought experiment. और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप एक कमरे के अंदर लॉक्ड हो और एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर जिसके ऊपर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं, और इंस्ट्रक्शन ये हैं कि टेबल के नीचे से इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, एक चाइनीज सिंबल आएगा, आप बुक को यूज करें देखने के लिए कि आपने कौन सा सिंबल वापस डिसाइफर करें, और आप एक पेपर पर सिंबल बनाएं और कमरे से दरवाजे के नीचे से डाल दें. जो बाहर चाइनीज लोग हैं, क्या उनका ख्याल होगा कि आप एक चाइनीज बंदे हैं अंदर, आपको चाइनीज समझ आ रही है? हाँ. क्या आपको चाइनीज समझ आ रही है? बिल्कुल भी नहीं. अब आप उस सिस्टम को इन्फिनिटली डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड और नुआंस बना दें, आपको फिर भी चाइनीज समझ नहीं आएगी. अगर आपकी जो रेफरेंस बुक है वो इंग्लिश में है, आप एक सिंबल को लेके इंटरप्रेट करके बाहर डाल रहे हैं, वो समझ नहीं आएगी. अब इसके एक कॉमन जो रिबटल होता है आमतौर पे एथियस वगैरह की तरफ से, वो ये होता है कि जब एआई की बात हो रही है तो जो आप बंदा कमरे के अंदर है उसको रिफर नहीं किया जा रहा, पूरे सिस्टम को किया जा रहा है, कमरा समेत जो प्लस आप जो हैं उसे तो कम से कम चाइनीज समझ आ रही है ना, क्योंकि प्रॉपर जवाब दे रहा है। उसका रिस्पॉन्स ये है कि ये पूरा सिस्टम दिमाग में हो सकता है, मैंने याद किए हों ये इंस्ट्रक्शंस और मैं उसकी बुनियाद पर दे रहा हूँ, कोई कमरे की जरूरत नहीं है, तब भी मुझे चाइनीज समझ नहीं आ रही। अगर एक रोबोट के अंदर एक सेंसर हो के वो सुने क्या हाल है तुम्हारा, वो कहे मैं ठीक हूँ बिलाल, उसका ये नहीं मतलब उसे क्या हाल है तुम्हारा समझ आ रहा है। तो ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स की लाइन क्रॉस नहीं हो सकती। मूवीज़ वगैरह में एंटरटेनिंग है लेकिन ये एक मुश्किल प्रॉब्लम है नेचुरलिस्ट के लिए सॉल्व करना, इसलिए
तो आप कह रहे हैं कि देखें जो मैं समझा कि मशीन चलती है इफ और इफ नॉट पे,
एग्जैक्टली
इसकी प्रोग्रामिंग है। अब इंसान को आप अगर मॉनिटर करें हिस्टोरिकली शुरू से लेकर आज तक ही अपने दोस्तों को, कभी कभार इंसान ऐसे डिसीजन मेकिंग करता है जिसमें आप कहते हैं ये इसने सोचा क्या था, मतलब कि सारे ऑड्स के अगेन अगर कोई भी इसकी जगह को ये काम करना ही नहीं चाहिए था और उसने वो किया क्यों, क्योंकि उसके दिमाग ने उसको कहा कि नहीं मुझे तो ये लग रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस ने कहा नहीं मुझे ये करना
ये,
है
ये तो, ये जो अभी जो डिस्कशन आ रही थी जो तैमूर तुम बात कर रहे थे कि यानी और ये बिलाल के प्रोसेसेस हैं और दिमाग कितनी जल्दी प्रोसेसिंग करता है और 5 GHz और ये जो भी है इसके हवाले से यही है कि हमारा जो तरीक़ेकार है या पैरामीटर है या बेंच मार्क है वो भी बहुत ही अगर कह लें मटीरियलिस्टिक नहीं तो बहुत ही यानी मशीन फोकस्ड मशीन सेंट्रिक है एक दिमाग की प्रोसेस को देखना। यानी यही अभी था कि अगर एआई के अंदर जो दूसरी इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं होती कि आप कितनी तेज़ी से मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं, एआई तो हम आज जिसके ऊपर ज़्यादा हो रही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के आप दूसरों की इमोशंस उसके बगैर बोले उसकी सिर्फ शक्ल देखकर या उसके तर्ज से आप कितना जज कर लेते हैं, उसके रवैये से उसकी गुफ्तगू से आप उसकी इमोशंस को किस तरह रीड कर लेते हैं, यानी ये भी एक इंटेलिजेंस है। डिसीजन क्रिएटिव इंटेलिजेंस एक अलग इंटेलिजेंस है। सिर्फ 1+1 को करना कितनी तेज़ी से करना हमने एआई के लिए मेयार सिर्फ यही रखा हुआ है। सवाल ये एक टेस्ट हो सकता है लेकिन फिर ये इंसान के लिए भी हो सकता है कि क्या एआई कोई ओरिजिनल, मेरे ख्याल से ये भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्या एक एआई कैन इट राइट अ शेक्सपियरियन प्ले, यानी उस लेवल का
क्या भी लिखी गई है। मतलब ऑब्वियसली वो मूवी सॉर्ट ऑफ रिडिकुलस भी है, उसकी स्क्रिप्ट काफी फनी है, यानी एआई ने इतनी अच्छी जॉब नहीं की लेकिन लिखी गई है और शोज लिखे गए हैं, मतलब पीबीएस ने शो रन किया है जो एआई ने लिखा है। और तो क्वेश्चन ये कि लोग कह रहे हैं कि ये बेहतर होते जा रहा है, यानी 1950s वगैरह में जो पहली गेम आई थी वो एक ये थी कि बेसिकली वो जो पिंग पोंग गेम थी पहली, ठीक है। अब आज के जमाने में
अटारी
अब आज के जमाने में गेम्स ऐसी हैं कि जैसे हम एक दो हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि
अब वर्चुअल रियलिटी
जो इंडिया ने एक गेम का एक वीडियो डाली कि एक जहाज के ऊपर फायरिंग हो रही है और ये पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो गेम की जो ग्राफिक्स है वो इतने अच्छे हैं कि वो तकरीबन असल जिंदगी जैसे जा रहे हैं। और तो बात है कि जिस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहे हैं,
सिर्फ ग्राफिक्स नहीं है गेम के अंदर भी, अगर आप कह लें एक तरीके का, अगर किसी ने एल्डर स्क्रोल्स वाली गेम खेली, स्काइरिम बड़े मशहूर गेम है, ओब्लिवियन, तो लोग तो उसकी तो बाकायदा मीम्स बनी हुई है, आप यूट्यूब पे जाएं कि वो जो NPCs हैं अभी एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी अगर शुरू की गेम्स में जाएं और फिर आगे जाते रहें तो वो ज्यादा फंक्शनैलिटी आती गई है शायद NPCs के अंदर।
मूवी बनानी पड़ी,
असल में बात ये है कि
बिल्कुल
एक लिमिटेड इफ और एल्स स्टेटमेंट नहीं है। अगर जो क्लासिकल प्रोग्राम है ना वो इफ एंड एल्स होगा तो मैं उसके अंदर 10 चीजें डालूंगा कि मैं कहूंगा क्या हाल है तो जवाब दोगे कि ठीक है, मैं कहूंगा, यानी अगर आप ये मिलियन भी कर दें तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ,
लेकिन क्या मशीन, लेकिन
जो एआई इज सपोज टू बी डूइंग इज सपोज टू बी राइटिंग इट्स ओन प्रोग्राम, क्या वो खुद लिख रहा होगा वो, अगर किसी ने अगर नेक्स्ट टाइम मिसाल के तौर पर किसी ने क्या हाल है की जगह कोई और चीज पूछी और उसके बाद वो खुद सीखेगा अच्छा ये क्या चीज है और वो सीखेगा। तो जो मशीन लर्निंग का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि द रियलिटी इज कि हम वीक एआई फेज के अंदर है,
नहीं
तैमूर वो लिमिटेड टू मशीन लर्निंग पैटर्न रिकॉग्निशन नेचुरल लैंग्वेज।
मेरा एक सवाल है क्या
स्ट्रॉन्ग एआई जो एक आइडियलिस्टिक एआई है जो मूवीज के एआई है वो इन रियलिटी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके अपना कोड इंप्रूव करेगा और वो अडैप्ट करेगा,
तो क्या कर सकता है ये
एवोल्यूशनरी अडैप्शन समझेंगे।
देखिए दो
इंसान एवोल्यूशन
जो कि मशीन लर्निंग,
इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। एक ये है कि क्या वो इंसानों को रिजेंबल कर सकता है या क्या वो बिहेवियर में मूवीज के एआई की तरह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो सवाल था ओरिजिनल कॉन्शियसनेस वाला कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एजेंट होता है उसकी सपोजिटली विजिबली फीलिंग्स होती हैं कि मैंने शुरू में ऐसे पकड़ना है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, उसके बाद मैंने आजाद होना है, क्या कॉन्शियस कॉन्शियस हो सकता है एआई की? नहीं, इसका सेल्फ लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी चाइनीज एक्सपेरिमेंट के अंदर
यानी तुम कह रहे हो कि वो इमोशंस अगर दिखा भी रहे, यानी कोई कोई इतने एआई ने इंसान को इतने अच्छे तरीके से एम्यूलेट कर लिया,
मेरे पर सवाल
नो मीनिंग्स असाइंड टू द सिंटैक्स जो एक प्रोग्राम पीस ऑफ कोड था कि सैड शक्ल बनाओ,
मेरा
तो नहीं पता इसका मतलब सैड शक्ल है, उसकी कोई सब्जेक्टिव स्टेट नहीं है जो जो उसका एक ओपिनियन हो कि सैड शक्ल क्या होती है वर्सेस हैप्पी शक्ल क्या होती है, इसका मतलब कि क्या सीखेगा? नहीं, वो सीखेगा इन टर्म्स ऑफ मोर कोड एंड सिंबल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग।
इंसान किस बेसिस पे सीखे?
एक मिनट
एग्जैक्टली, इंसान अब
ये एक अच्छा सवाल है। अब इस सवाल के ऊपर 1997 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बायोलॉजिस्ट वगैरह थे और साइकाइट्रिस्ट वगैरह, जिसके अंदर एक बंदे डेविड चार्मर्स ने कहा था, जिसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसने कहा था कि अगर आप एआई वगैरह छोड़ दें, जमाने में तो डिस्कशन थी नहीं, उन्होंने कहा फॉर इंसान भी कुछ चीज़ें दिमाग की प्रॉब्लम्स हैं जो सॉफ्ट प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्वेबल हैं, कि जब पेन होती है हम हाथ के पीछे करते हैं, वो ब्रेन स्टेट्स मेजर करते हैं कि ये चीज़ ट्रिगर होती है, वो एक न्यूरॉन फायर करता है, हाथ पीछे जाता है। उसने कहा हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए हार्ड प्रॉब्लम है कि आप साइंटिफिकली इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो मेरा एक फर्स्ट पर्सन स्टेट है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसकी साइंटिफिक कोई डेफिनेशन नहीं है और ये एक्सप्लेनेबल नहीं है। जो नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये आइडेंटिकल टू ब्रेन स्टेट्स है, टू फिजिकल मैटर है, जो हमें सोचते हुए नॉन सेंसिकल लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एक फिजिकल मैटर है, डजंट मेक सेंस। ऑफकोर्स हमारा थियस्टिक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि रूह अलग चीज़ है और ये सोल है, माइंड ब्रेन ड्यूअलिटी जिसे कहते हैं ड्यूअलिज्म, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन हो जाती है जो रोबोट्स के अंदर ऑफकोर्स नहीं है बिल्कुल भी सारा कुछ।
खैर मैं ही पूछ रहा था कि एआई से आपने प्रोग्राम किया कि क्या हाल है, ठीक है, अगर वो ठीक नहीं तो बोलेगा नहीं ठीक है। क्या एआई या रोबोट, जो अगर हम उसको रोबोट ही बोलते हैं, क्या रोबोट मेरे तरफ फेक कर सकता है अगर कुछ भी सही नहीं हो, आप उससे पूछेंगे क्या हाल है और आप बोले जी मैं ठीक हूँ?
कर सकता है, लेकिन इट डजंट मीन व्हाट इट्स सेइंग। उसके अगर उसने अपने प्रोग्राम में या खुद लर्न किया या किसी ने टाइप किया कि वो
मैं इसका सवाल एक सेकंड, मेरी फीलिंग ये है कि मैं अभी जिस तरह होता है कोई पूछता है कि यार क्या हाल है, यार मैं अभी उस घन चक्कर में पढ़ने नहीं चाह रहा कि यार मैं अपनी लंबी कहानी दुख भरी कहानी सुनाओ, तो मैं कहता हूँ यार ठीक हूँ, यानी यही होता है ना। तो क्या एआई या रोबोट इतनी, या क्या उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसको वो इंटरप्रेट करेगा कि एज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, और फिर वो कहेगा मैं अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को आर्टिकुलेट नहीं करूंगा, अगर किसी ने मुझसे सवाल किया मैं अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को छुपाऊंगा और मैं फेक करूंगा कि
फेक हैप्पीनेस,
मैं कहूंगा हाँ यार सब कुछ खैरियत से, ये एक रोबोट कर सकता है या करने की सलाहियत रख सकता है।
मैं अगर बताऊं कि इंसान के साथ सीखता है, जो बच्चा होता है लोगों को देखता है ना, वो देखकर वो देखता है कि लोग एक बात कह रहे हैं उस बात का क्या असर हो रहा है, उसका मतलब क्या है, और शुरू में उसको उसका मतलब नहीं समझ आता। मेरा बेटा है उसको नहीं समझ आता कि चीज़ों का मतलब, कई दफ़ा तो वो बस वो रिपीट कर रहा होता है लफ्ज़ और वो फिर उसके साथ मीनिंग असाइन करना शुरू करता है। तो द आइडिया इज कि देखो गूगल ने गूगल अल्फा जो गूगल की एआई है उसने चेस इस तरह से सीखी कि उसने मिलियंस ऑफ गेम्स उसने रिव्यू की विदाउट नोइंग द रूल्स, और उसने वो अब दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट यानी कंप्यूटर जो चेस खेल सकता है। और क्लासिकली क्या होता था, जो एक्सपर्ट सिस्टम्स होते थे ना, एक्सपर्ट सिस्टम ये होता है कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपको चेस के रूल्स बताए जाते हैं कि आपने ये मूव्स करनी है, फिर उसके बाद आप एवेल्यूएट करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं। इसे कुछ पता नहीं था, इससे कहा था बस तुम ये देखो गेम्स को, उसने मिलियन गेम्स को देख लिया और उसने सीख लिया विदाउट इवन नोइंग कि ये रूल्स क्या हैं। तो इस बेसिकली इंसान की जो सारी लर्निंग है वो यही है कि, और मैं भी अगर मुझे कोई पूछे ना क्या हाल है और मैं नहीं कहता, मैंने भी ये चीजें देखी हैं लोगों को, मैंने भी इन अ सेंस आप किस लेवल पर आप कहेंगे कि कोई ऐसी चीज मैं कर रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं देखा करते हुए, मैंने सब लोगों को देखा है ये करते हुए, तो विदाउट मुझे पता है कि कॉन्शियसनेस एक क्वेश्चन है, लेकिन ये
क्वेश्चन नहीं है, एआई कॉन्शियस नहीं हो सकता
अगर लेकिन उसका सवाल ये बन रहा है नहीं,
लेकिन
हम
ऑपरेशन के बारे में
जो क्राइटेरिया मशीन के लिए रखा हुआ है उसके ऊपर तो हम तैमूर मैं और नहीं उतर रहे, वो कह रहा है
मैंने एग्जैक्टली यही कहा कि हमें अपने बारे में किस तरह पता है कि हम कॉन्शियस हैं,
हाँ।
सिर्फ अपने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की वजह से, मैं एज अ बेसिक बिलीफ एक्सेप्ट करता हूं,
मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम कॉन्शियस हो,
मैं एज अ बेसिक बिलीफ एक्सेप्ट करता हूं, बेसिक बिलीफ का मतलब है जिसे मैं फिलोसॉफिकली प्रूव नहीं कर सकता,
मुझे नहीं पता ये
कि मेरे अलावा बाकी सारे भी कॉन्शियस,
यानी वो जो डिकार्ट का मशहूर है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम,
एग्जैक्टली
वो जो एक
उसकी बुनियाद मुझे अपना पता है और बाकियों का मेरे एक फाउंडेशनल अजम्पशन है, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती, मैं बाकियों का भी प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लॉजिकली रीजनेबल लगता है कि मैं कोई स्पेशल चीज नहीं होगा जो ओनली बंदा फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस,
ये अजम्पशन हम रोबोट्स के बारे में क्या करने से रोक रही है,
इसलिए क्योंकि लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता ये, अगर आप किसी चीज को प्रोग्राम करें जो मैंने आपको मिसाल दी सनसेट वाली, उसे आप कॉम्प्लिकेटेड कर दें, आप उस चाइनीज रूम के अंदर ये डाल दें कि अगर कोई सिंबल ऐसा आएगा जो पहले बुक के अंदर नहीं है तो तुमने कैसे रूल्स उसके लिए नए रूल्स बनाने हैं,
बोलेगा ना सिंटैक्स
है, वो नए रूल्स बनाने की इंस्ट्रक्शंस भी हो, वो नए रूल्स बना दे और नए पेजेस लिख दे फॉर फ्यूचर यूज और उसको भी यूज करने लग जाए, इट स्टिल डज नॉट अंडरस्टैंड चाइनीज, उस बैरियर को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है जो एक कोडिंग बैरियर वर्सेज असाइनिंग मीनिंग टू थिंग्स, इट इज नॉट पॉसिबल,
खूबसूरती का मतलब एक सिमेट्री होती है, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बंदे को कहें खूबसूरत है तो इसके ऊपर काफी
अच्छा लगा आपने मेरी तरफ देखा, ये
मिसाल तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है मैं मतलब पॉइंट ये है कि इसके ऊपर रिसर्च की गई है और रिसर्च ये कि डेफिनेटली हमारा दिमाग किस तरीके से हमारी आंखें देखती हैं, इंपल्सेस अंदर जाते हैं, दिमाग उसे कैलकुलेट करते हैं और कुछ सिमेट्री कुछ प्रोपोर्शंस ऐसे हैं जिनको हम देखकर ये उसको साथ असाइन करते हैं कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं और ये हम ये करते हैं, इन अ सेंस कि अगर कोई विदाउट हैविंग कि ये कि सूरज को देखा सनसेट को देखा अच्छा है,
मुझे लगता है कि
दे आर सम विजुअल साइंस एक इमेज के अंदर जिसके बेसिस के ऊपर हम उसको कहेंगे खूबसूरती,
exactly. मुझे लगता है कि हमारा जो साई वाली शेर है वो पॉइंट मिस कर रहे हैं कंप्लीटली, सर के ऊपर से जा
रहा
है,
आखिरी क्लैरिफिकेशन इस पे, जब मैं कहता हूँ कि सनसेट खूबसूरत है उसकी बेसिस शायद वही हो जिसपे एआई का है जो आप कह रहे हैं सिमेट्री वगैरह वगैरह, लेकिन जब मैं कहता हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ सनसेट खूबसूरत,
जैसे कुछ लोगों को जेनोसाइड खूबसूरत लगता है लेकिन इसका मतलब थोड़ी खूबसूरती है उसमें,
मेरी तरह ही और सेम बेसिस पे कि सिमेट्री अच्छी थी कलर सेम था कह सकता है, लेकिन वो ये फील नहीं कर रहा कि रोबोट इट फील्स नथिंग,
फील करने का मतलब क्या है,
कैन अ रोबोट ड्रीम,
अब ये मैंने अभी कहा है कि मैं सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव ओपिनियन बता सकता हूँ, समथिंग बियॉन्ड कैलकुलेशन है,
लेट्स से अगर तुम फील कर रहे हो कि ये सनसेट खूबसूरत है इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या, मतलब क्या है,
मतलब कि तुम फील का मतलब क्या है, इसका मतलब ये यानी एज एन एग्जांपल अगर क्या हो गया कि तुम फील कर रहे हो सनसेट खूबसूरत है,
इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि द स्टेटमेंट कि सनसेट खूबसूरत है का कोई रियल मीनिंग है आउटसाइड देयर, ये नहीं है कि जो इनपुट मेरे अंदर आया उसको मैंने कैलकुलेट किया कि इसकी सिमिलरिटी का ये लेवल था तो जो आउटपुट होना चाहिए बेस्ड ऑन मेरी लर्निंग या प्रोग्रामिंग इज द वर्ड्स द सनसेट इज ब्यूटीफुल, मैंने एक मीनिंग असाइड किया टू समथिंग आउटसाइड ऑफ मायसेल्फ व्हिच इज द सनसेट,
खैर बहुत ये बड़ा टॉपिक है इसको जितना, लेकिन मैट्रिक्स में कॉन्शियसनेस के अलावा एक और चीज भी थी, एक और फलसफा भी था, रेड पिल और ब्लू पिल वाला, अब ये क्या है, मॉर्फियस जो है जब नियो को पता चल जाता है कि वो मैट्रिक्स रियल है और सब कुछ मैट्रिक्स के आसपास सिमुलेशन में रह रहा है, मॉर्फियस ये कहता है कि अब तुम्हारे पास चॉइस है, फ्री चॉइस है, तुम्हारी अपनी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं कर सकता, तुम ये ब्लू पिल लो, तो ब्लू पिल सिंबलाइज करती है कि तुम जो है अपनी जो इधर मैट्रिक्स के अंदर सिमुलेशन के अंदर जिंदगी जी रहे थे वो जीते रहोगे, मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल सकते, गफलत की जिंदगी इसको मैं कहता हूँ कि मतलब जो आदमी जानवरों की तरह रहता है कि मतलब जो चल रहा है गौर फिक्र नहीं करता, हाँ बस चल रहा है सही है ठीक है, सवाल जवाब नहीं पूछता, एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी, और रेड लेकिन तुम रेड पिल लोगे तो तुम जो है फर्दर ट्रूथ की तरफ जाओगे और वो जो है कंफर्टेबल नहीं होगा तुम्हारे लिए, बहुत से लोगों ने रिजेक्ट भी कर लिया ट्रूथ को, तो उस पर वो रेड पिल लेते हैं ऑब्वियसली, वो थोड़ा सा उसको सिंक करने में मसला होता है कि बिल्कुल एकदम नई रियलिटी आती है, वो हिट कर जाता है, तो कितने लोग हैं जो रेड पिल लेंगे और कितने लोग हैं जो ब्लू पिल लेंगे अगर उनको चॉइस दी जाए? अच्छा, ब्लू पिल का भी ये है कि मूवी नहीं दिखाया लेकिन इसकी बैक स्टोरी, एक हैकर ने ब्लू पिल लिया था, उसके बाद क्या होता, उसको ये पता था मैट्रिक्स एक्सेस करता है लेकिन उसको फर्दर सवालों का जवाब नहीं, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था और वो वैसे ही क्रैश कर गया था। क्योंकि पार्शल ट्रूथ भी ट्रूथ है, अगर आपने उसको पूरा नहीं देखा आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया लेकिन आप उसको पूरी तरह नहीं देख सके।
इसमें एक और सवाल इससे उठ रहा है जो कि तुम चॉइस से उठा रहे हो, यानी ये भी एक सवाल है कि क्या फ्री विल और चॉइस, इज इट पार्ट एंड पार्सल विद कॉन्शियसनेस? क्या एआई के पास या रोबोट्स के पास फ्री विल चॉइस नाम की चीज़ हो सकती है, हम डिटरमिन कर सके हैं या कर सकते हैं? कोई इस हवाले से किसी के पास इंसाइट है?
ये बहुत मुश्किल सवाल है।
हाँ,
क्योंकि ये डिटरमिन करना कि हमारे पास भी फ्री विल,
हाँ वो तो ये भी ये यानी ये बिल्कुल अभी तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी बहुत सारे, बल्कि ये आपके लिए एथियस्टिक जो वर्ल्ड व्यूज हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास जो यही वाली रखते हैं कि चॉइस इज एन एल्यूजन करेंटली, वो कहते हैं वो मेरे ख्याल से उसको पॉजिटिव डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि हर चीज़ वो एक पहला जो पिन कहीं पे कायनात के शुरू में जो गिर गई है वो इम्पैक्ट करती जा रही है, और मैं जो फैसले जो मैं फ्री चॉइस जो मैं ले रहा हूँ या मैं जो चॉइस बना रहा हूँ
फ्रीली, जो मैं गलत चॉइसेस कर रहा हूँ जिंदगी में वो फ्री नहीं है।
हाँ, वो नहीं है, वो इट हैज बीन डिटरमाइंड कि किस तरह हुआ।
अगर तो हम लोग सिर्फ फिजिकल एटम्स हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स चॉइस इज एन इल्यूजन बाय डिफॉल्ट, हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, वन एटम क्रैशेस इनटू अनदर, एक केमिकल प्रोसेस होता है, हमारी कोई दिमाग की स्टेट होती है, हम कुछ कर लेते हैं। हमारा जो बिलीफ है कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है वो रिलीजियस बेसिस पे है कि हमारे पास स्ट्रॉन्गर रीजंस हैं जो बिलीव कर लेते।
फ्री विल भी जो है वो टोटली फ्री विल तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में लिमिटेड फ्री विल,
लिमिटेड फ्री विल है।
अब मैं एक एग्जांपल देता हूं,
लिमिटेड फ्री विल से क्या मुराद है?
नहीं, नहीं, मेरे पास मतलब कि आप डेस्टिनेशन वहीं पर एंड अप करेंगे, इट्स द जर्नी दैट काउंट्स, कि मल्टीपल जर्नी हो सकती है लेकिन आप एंड पॉइंट पे उसी डेस्टिनेशन पे। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं इसकी, पहले जैसे वो कहते हैं ना रिस्क मिलना है उसी वक्त मिलना है, जितना भी आप कुछ कर लें आपको उतना मिलना है। अब हज़रत अली की जो एग्जांपल है जिसमें उनके साथ एक बंदा था और ऊँट की रखवाली के लिए रखा था, उस बंदे ने वो ऊँट का जिसपे जो बैठते हैं चोरी करके मार्केट में बेच दिया, उसको 2 दिनार मिले। हज़रत अली ने कहा कि ये अगर चोरी नहीं करता, मेरे पास पहले 2 दिनार थे जो मैं उसको वैसे इसको तोहफा देने वाला था कि इसने रखवाली की है, अब वो 2 दिनार उसके पास पहुँचने थे, फ्री विल उसकी कहाँ पर आई बंदे की? उसने चॉइस क्या मेक ली, उसने हलाल तरीके से वो चीज़ अर्न किया है हराम तरीके से? तो जर्नी हमारी फ्रीली है, डेस्टिनेशन मार्क्ड है, कहीं ना कहीं पहुंचना है, इसको इस्लाम बोलता है लिमिटेड फ्री विल।
हाँ ठीक है, लिमिटेड फ्री विल है लेकिन वही है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं कि कुछ लोग कुरान के अंदर आया था कि कुछ लोग अल्लाह ताला ने बनाई ही इंसानों और जिनों को जहन्नम के लिए, यानी ये है, लेकिन वो किस तरह चेंज, यानी फिर यहाँ पर सवाल होता है कि फिर हम अमल का इसके अंदर अनसर कहाँ आता है?
ये कुरान के
अंदर है, प्रीडेस्टिनी है, देखिए हमें तो उसके कदर है ना,
कदर है लेकिन उसके अंदर यही है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने जो अपना निज़ाम बनाया उसके अंदर ये कह लें कि एक वो रखा है, वो हदीस भी आती है कि कलम उड़ गए हैं और जो स्याही है वो सूख चुकी है, लेकिन फिर ये भी हदीस है कि मुकद्दर को सिर्फ एक ही चीज़ बदलती है वो दुआ है। तो ये
देखिए इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं,
एक हदीस है कि कदर की जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और एक जो एक
हम कदर में नहीं जाना चाहिए,
कदर जो है वो डेस्टिनी है, डेस्टिनी
नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि कदर
वो आपकी बेसिकली जो अजली कदर है वो ये कि अल्लाह ने सबसे पहले तख्त पर बैठने के बाद कलम बनाया और कलम से कहा लिखो, कलम ने कहा क्या लिखूं, तो अल्लाह ने कहा कि वो सब कुछ जो अभी से लेकर क्यामत तक होगा। तो सब कुछ एक तरीके से समझे एक मूवी है और मूवी का एक स्क्रिप्ट लिखा गया है, और उसके बाद क्या होता है जो सेकंड टाइप होती है कि लैलतुल कद्र पर अगले साल की जो है वो रिवीजन होती है। तो समझे कि जब एक साल आता है तो उसकी कुछ दुआओं के बेसिस पर, कुछ और बेसिस पर अल्लाह जानता है कुछ रिवीजन होती है। और फिर थर्ड ये है कि मूवी जिस वक्त, जैसे मिसाल के तौर पर मूवी अभी शूट हो रही है, कोई लाइन बोलते हुए कुछ इम्प्रॉम्प्टू कुछ एक ऑनलाइन ऐड कर देता है, वो रिवीजन अल्लाह ने कोई दुआ के बेसिस पर आपकी की है। तो आपकी जो कदर है ये डिफरेंट स्टेजेस पर होती है, एक कदर वो होती है जो,
लेकिन एक्ट जो होगा आपकी जिंदगी का वो जिंदगी से मौत तक है, मौत फिक्स्ड है, उसके बीच में आप खेल रहे
हैं, बीच में भी जो हर एक एक्टिविटी जो है वो आपकी इन अ सेंस डेस्टिनेशन है ना।
नहीं लेकिन, लेकिन आपकी
बोल रहा हूं, वो भी मेरी बोलना भी एक चीज, एक डेस्टिनेशन है बोलना, जो जर्नी इटसेल्फ के उसके हर एक स्टेजेस है और वो एक
रियल टाइम स्पेक्ट्रम, हर एक कदम एक डेस्टिनेशन।
दो दो फाउंडेशनल पॉइंट्स हैं इस चीज को डिस्कस करते हुए। एक के जो कदर है उसके हिसाब से अल्लाह ने जिस तरह तंगूर भाई ने कहा हर चीज लिख दी है और जो अल्लाह ने लिखा है वही होना है, क्या इसका मतलब है फ्री विल नहीं है? उसका भी जवाब है कि फ्री विल है। कुरान ने कह दिया इन्ना हदीना सभी लम्मा शाकिर मम्मा कफूरा, हमने रास्ते दिखा दिए या शुक्र गुजार बने या कुफर करने वाला बने। अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हमारे बेसिक ह्यूमन दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स क्लैश करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह को पता है या अल्लाह ने लिख दिया हर चीज़ जो होनी है और मेरे पास फ्री विल भी है। लेकिन ये दोनों बातें इस्लाम के बुनियाद पर दोनों बातें सच हैं अपनी अपनी जगह पर। अब इसको आप कह रहे हैं कि अल्लाह का नॉलेज है लेकिन आपको
इसको हम अपनी लिमिटेड नॉलेज बोलेंगे,
लेकिन ये चीजें जो हमें समझ आ नहीं सकती और ना हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा इंट्यूशन है।
ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं तकदीर और कदर की उस पर नहीं जा रहा क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा जिसको हम अभी रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फ्री विल और फ्री चॉइस की बात हुई थी कि अगर हम कॉन्शियसनेस के साथ अगर उसको लिंक करें और इसी बेसिस पे, यानी जो क्या चीज़ इंसान को, अगर हम कहें कि दूसरी इंसान और जिनको दूसरी मखलूक़ात से डिफर करती है, वो उसकी कॉन्शियसनेस ही है और उसकी कॉन्शियसनेस का एक हायर स्टेट है। यानी इस्लाम भी डिफाइन करते हैं, नहीं आप इस्लाम भी और वैसे इन जनरल भी आप कॉन्शियसनेस, एक तो एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो आप जागे में, यानी ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक ज़्यादा हायर जिससे तुमने कहा था कि एक कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहे हैं, अंदर सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, मीनिंग असाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं। तो ये एक्शन ले रहे हैं किस बेसिस पे ले रहे हैं, ये फ्री विल फ्री चॉइस यहाँ पे उसी कॉन्शियसनेस का एक एक
प्रोडक्ट है,
एक हिस्सा बन रही है,
प्रोडक्ट है।
हाँ
बेसिकली
हाँ। तो
देखिए फ्री विल मेरे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग लिंक बनता है। आपने कभी सुना है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स में?
सही,
फिजिक्स के अंदर। उसके अंदर ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर ना हो और आप इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी पार्टिकल्स फायर करें तो क्या रिजल्ट होता है वर्सेस अगर एक ह्यूमन ऑब्जर्वर हो, तो वो रिजल्ट वैस्टली डिफरेंट होता है, जिसके साइंटिस्ट के पास उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
जो मेरे ख्याल से श्रोडिंगर्स कैट जैसी चीज,
श्रोडिंगर्स कैट एक थॉट एक्सपेरिमेंट था इसी के बेसिस पे।
हाँ।
क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन ने शो किया कि अगर दो स्लिट्स हो और आप उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फायर कर रहे हैं रैंडम, और पीछे एक कैनवस है जिसके ऊपर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे वहां मार्किंग्स आएंगे, तो कोई ऑब्जर्वर ना हो तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट्स के थ्रू एट वंस जाता है लाइक अ वेव, जिसमें कहते हैं कि वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। असल में दुनिया में कुछ नहीं हुआ, बस प्रोबेबिलिटी थी कि या इसमें होगा या इसमें होगा। अगर आप एक स्लिट पे एक ऑब्जर्वर लगा दें, डिटेक्शन मशीन लगा दें, तो एट वन टाइम द इलेक्ट्रॉन गोज थ्रू आइदर ऑफ द स्लिट्स, दोनों के थ्रू नहीं जाता एक टाइम पे, और पीछे जो पैटर्न आते हैं कैनवस पे वो जस्ट बिहाइंड द टू स्लिट्स होते हैं कि स्ट्रेट लाइंस नॉट वेव्स। अब इसको श्रोडिंगर ने कहा था कि क्योंकि वो काइंड ऑफ स्केप्टिक था, उसने कहा पॉसिबल कैसे है, तो उसने कहा कि अगर मैं इसे रियल दुनिया के चीज़ों में लाऊँ, तो अगर एक बिल्ली हो एक बॉक्स के अंदर और बॉक्स के अंदर कोई डिवाइस है जो एक मिनट में 50% चांस है चल जाएगी और बिल्ली मर जाएगी और 50% चांस है कि नहीं मरेगी, तो उसने कहा कि क्या इंसान जब तक बॉक्स खोलेगा और देखेगा क्या हुआ है, क्या बिल्ली उस वक्त तक जिंदा और मरी हुई है फिजिकली, ये नहीं कि हमें पता नहीं है, लिटरली जिंदा और मरी हुई है, अ वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी जिंदा 50% मरी हुई है एंड द वेव इज सपोजिडली गोइंग टू कोलैप्स, अब इंसान देखेगा।
जब उसको दफना रहे थे तो लोग काफी कंफ्यूज थे कि एक तरह खोल के देख लेते हैं कि मर गया या हो सकता है कि
इंसान जब तक देखे नहीं तो यानी इट इज अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम, यानी ये ये तो इसमें यानी फिर ये एक मेरे ख्याल से निकालते हैं आउटकम इसका निकलता है कि इंसान की कॉन्शियसनेस इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रियलिटी।
हाँ
ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से वो वाला भी फिनोमेना है कि एक एटम इज़ नॉट अवेलेबल एट अ सिंगल प्लेस एनी टाइम, जब तक आप ऑब्जर्व करना नहीं शुरू करते तभी वो एटम वहाँ पे होता है।
एटम नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन।
हाँ कोई पार्टिकल,
लेकिन असल में हम माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है उसी तरह समझ नहीं सकते ना, हम क्वांटम फिजिक्स को हम इसी तरह समझते नहीं है, और मेरा ख्याल है इसकी डेफिनेटली कोई और एक्सप्लेनेशन होगी कि
इसकी बहुत एक्सप्लेनेशन प्रपोज की गई हैं। जो फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन है जो आजकल बहुत मशहूर है पॉप कल्चर में, द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो ये क्लेम करती है कि जब ऑब्जर्वर आ गया और इलेक्ट्रॉन को आइदर ऑफ द टू होल्स में जाना पड़ा तो दो दुनिया बन गई है,
मल्टीवर्स,
वो एक में गई है एक में दूसरी में गई है. तो उस क्लेम के अंदर बिल्ली आपकी दुनिया के अंदर जिंदा है और एक और दुनिया के अंदर मरी हुई है और दोनों दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं एट वन टाइम, जिंदा और मरी हुई नहीं है. अब ये काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस की इंपॉर्टेंस से भागने का तरीका है, प्रूवेबल नहीं है कि मैनी वर्ड्स.
ये कॉन्शियसनेस से भागने के लिए हर चीज कर लेते हैं.
बिल्कुल,
जैसे मल्टीवर्स ये थीरी है, इसके बाद एक और थीरी है कि
सिमुलेशन
चेन यूनिवर्सेस हैं, कि एक यूनिवर्स खत्म होती है उसके इख्तिताम पर एक धमाका होता है, वो बिग बैंग होता है जो बेसिकली एक और यूनिवर्स को लेकर
आता है
और इटर्नली ये चेन चलती जा रही है. और इसी से मिलती जुलती एक सिमुलेशन थीरी है कि एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है टेक्नोलॉजिकली कि वो सिमुलेशन उनकी रियलिस्टिक होना शुरू हो जाती हैं. अब वो ऐसी सिमुलेशन बनाते हैं जो बिल्कुल अनडिफरेंशिएबल होंगी एक्चुअल रियलिटी से. और फिर वो सिमुलेशन इट्सेल्फ जो है वो अपनी यानी वो सेंटिएंट हो जाती है और वो फिर एक और सिमुलेशन बनाएगी और एक चेन रिएक्शन होगा सिमुलेशन का.
ये बड़ा
और ये एलन मस्क ने भी ये कहा है कि बेसिकली थ्री सिनेरियोस कि एक हमारी दुनिया जो है वो हम इतने देर तक रहते हैं और हम कंटिन्यूसली एडवांस करते रहते हैं, प्रोग्रेस करेंगे टेक्नोलॉजिकली कि इवेंचुअली हम एक सिमुलेशन बना सकें. ठीक है, अब जो हमारी मतलब हमारी सिविलाइजेशन को हमारी दुनिया को एमुलेट कर सके. दूसरा ये कि हम उसे करने से पहले किसी तरीके से ख़त्म हो जाएं. और तीसरा ये है कि हम ऑलरेडी सिमुलेशन का हिस्से हैं और उसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर सिमुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं देन चांसेस ये हैं कि एक रिकर्सिव सिमुलेशन होगी, यानी एक सिमुलेशन दूसरी सिमुलेशन को जन्म देगी, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो प्रोबेबिलिस्टिकली आप किसी आप पहले नहीं हैं प्रोबेबिलिस्टी का आप किसी चीज़.
लेकिन इसके अंदर भी मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ये भी एक चीज़ है कि जो कि यानी फैलेसी है एक तरीके से या पैराडॉक्स है कि ये अगर इन्फिनिटली आगे बढ़ सकते हैं
कॉज एंड इफेक्ट
यानी तो इन्फिनिटली पीछे भी जा सकते हैं, तो देर इज नो बिगिनिंग, यानी जिसको आप
इन्फिनिट पास्ट जो है वो एक अब्सर्ड कॉन्सेप्ट है.
हाँ,
क्योंकि द इन्फिनिट इज रियल ओनली इन मैथमेटिक्स. मैथ्स के अंदर मैं कहूँगा कि इन्फिनिट पास्ट था, उसमें से 5 मिनट आपने निकाल दिए, कितना बचा, अभी भी इन्फिनिटी बचा. अब रियल दुनिया के अंदर
हमें पता है हम ये यानी अल्लाह हमेशा से है.
नहीं नहीं,
और ये सवाल है जो
नहीं है, अल्लाह टाइम के अंदर नहीं है.
हाँ,
टाइम बाउंड नहीं है, इस यूनिवर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट है. टाइम हमारे बिलीव्स के अंदर एक चीज है जिसको अल्लाह ने बनाया है. अल्लाह ने टाइम को बनाया है. अब ये हमारे समझ से बाहर है कि एग्जिस्टेंस आउटसाइड ऑफ टाइम कैसे हो सकती है.
हाँ,
लेकिन आप ये नहीं कह सकते.
जैसे मैं लॉबस्टर की एग्जांपल देता हूँ,
टाइम में हमेशा से
एक 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 श्रिम्प जो है, हमारे बेसिक 3 कलर्स हैं, इसमें हम कलर पूरी दुनिया के कलर्स देखते हैं, जो जैसे बेसिक कलर है रेड ग्रीन और ब्लू, तो उसके शेड्स और उसके मिक्सचर से हम सारे कलर. अब वही चीज़ लॉबस्टर के अंदर 32 है मेरे ख्याल से, तो वो तो हमसे इतने ज़्यादा कलर देख सकते हैं, तो वो माइंड माइंड की बात है. हमारा माइंड कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता टाइम के बगैर कोई स्पेस. यहाँ पर हम कोलैप्स कर जाते हैं, इससे जा भी नहीं सकते.
ये ह्यूमन लिमिटेशन है. लेकिन उसमें ये वाला जो अगर हम रेड जो सवाल आया था रेड बिल और ब्लू बिल इसके हवाले से कि अगर हम क्या जो तुमने साथ किया था कि जहाँ उसके बाद से हम कहाँ निकल गए.
मैं वही कि कितने लोग हैं जो ब्लू बिल लेके रहना चाहेंगे दुनिया में. हाँ, और कितने लोग हैं जो रेड बुल लेके हकीकत
में जाना चाहेंगे. इसका जवाब ये है कि अक्सर लोग कहेंगे कि हम रेड बुल ले लें अगर हमें चॉइस मिले.
हाँ,
लेकिन असल में काफी कम लोग रेड बुल लें.
हाँ,
लोग
अपने इसका मैंने एक सेट बनाया कि
जवाब कई लोग लेंगे रेड बुल लेकिन फिर बाद में अफसोस करेंगे.
हाँ, फिर वो साइफर बन जाएंगे और फिर वापस उनको जाना पड़ेगा गफलत.
लोग गफलत में खुश होते हैं.
खैर, इग्नोरेंस इज ब्लिस. रेड बुल वाले की मैंने देखे खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो थोड़ा सा रिबेलियस होते हैं नेचर में, सवाल बहुत होते हैं उसके दिमाग में, वो सेटिस्फाइड नहीं होता जो उसको दिए जाते हैं फैक्ट्स से, वो सर्च करता रहता है. और ब्लू पिल वाली की एक होती है कि वो हाँ बस चल रहा है सही है ठीक है, कि उसने कह दिया तो मान लो वो, और वो जो है हमारा दखल नहीं है, अपनी लाइफ गुजारो. और वो ये दो बेसिक पर्सनैलिटीज हैं जो पिल्स पर आप समराइज कर सकते हैं, जो कि दुनिया में हैं. मेजॉरिटी लोग ब्लू बिल वाले सिस्टम से खुश हैं, उनका लेना देना नहीं, जिए जानवरों की ज़िंदगी गुजारनी, मर जाएंगे ख़त्म बस. वो बहुत कम है जब पूछते हैं कि ये ज़िंदगी क्या है, इसमें आखिरत कोई चीज़ है, पर्पस क्या था, मैं पैदा ही क्यों हुआ, नहीं होता तो कितना अच्छा होता, ये सारे सवाल होते हैं। सोसाइटी जो है एडवांस करने चाहिए, लेकिन आप
क्या ये ब्लू पिल, अभी जो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था जो तुम ब्लू पिल कह रहे हो कि हमारे यहाँ जो कि एक एक तरीके से ये जो सिमुलेशन थ्योरी कह लें, मल्टीवर्स थ्योरी कह लें, ये जितनी भी थ्योरीज हैं, यानी दीज आर ऑल बीइंग प्रपोज्ड, क्योंकि एक सिंगल थ्योरी आपने नहीं माननी, आपने एंटरटेन भी नहीं करनी, और वो थ्योरी ये कि एक क्रिएटर है जिसने क्रिएशन उसकी वजह से है, यानी आपने इतनी एब्जर्ड किस्म की थ्योरी मानने के लिए तैयार हैं कि सिमुलेशन चल रही है और एक एंडलेस सिमुलेशन चल रही है और मल्टीवर्स है कि हर चॉइस के ऊपर एक यूनिवर्सेस क्रिएट होती रहती हैं या एक चेन वर्स है, यानी आपने जिसको मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से एक इस्लामिक फिलोसोफर ने सोचा था, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का या इनलाइटनमेंट के बाद जो लिबरल फिलोसफी, ये थियोफोबिया है, क्योंकि अब वेस्ट जो है ना हर चीज़ को फोबिया से ही समझती है, कोई होमोफोबिक है तो कोई ट्रांसफोबिक है तो वो फोबिक है, तो ये थियोफोबिया यानी क्रिएटर के कॉन्सेप्ट से इतनी शदीद किस्म की एलर्जी है कि आपने उसको मानना ही नहीं है, और आपने आप ये एंटरटेन कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास कोई अभी तक जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई एम्पेरिकल मीन नहीं है प्रूफ करने का सिमुलेशन थ्योरी को। मल्टीवर्स का मैं
तो डिस्प्रूव कर चुका हूं,
अगर आप मल्टीवर्स का कभी नहीं है,
एम्पेरिकल जहां पे आप खुदा के लिए आते तो आप कहते कि नहीं खुदा के लिए तो एम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए।
मैं तो डिस्प्रूव कर चुका हूं, अगर ये सिमुलेशन होती मैं सुपर ह्यूमन होता, सीधी बात है, ठीक है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं उड़ पा रहा।
अगर नहीं है, अगर मल्टीवर्स है तो आप अकाउंटेबल ही नहीं है अपने एक्शंस के लिए।
नहीं,
मतलब मैं यहाँ मैं ऐसी मतलब किसी को गोली मार दूं, मैं कहूं कि यार ये किसी और दुनिया में नहीं लगी,
वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं
यूनिवर्स में नहीं लगी,
वो
इनफिनिट यूनिवर्सेस है, कोई फर्क नहीं
पड़ता। एथियस्ट के नजदीक या जो जो इस फिलोसफी को मानते हैं, जो कम से कम क्रिएटर को डिनाई करते हैं, उनके नजदीक मोरालिटी इज रिलेटिव। अगर तो मार दो किसी को और बाकी दुनिया कहे कि ठीक है तुम्हारा,
मैं मार रहा हूं, मैं किसी न किसी यूनिवर्स के अंदर मैं मार रहा हूं, यानी मल्टीवर्स में यही है ना कि एक यूनिवर्स में मैं साद भाई को, एक में ताहा को, एक में बिलाल को, और एक में मिस होती है इधर, एक इधर मिस होती है, कि हर पॉसिबिलिटी मौजूद है, विच मीन्स कि हम जो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में वो मीनिंगलेस है।
मल्टीवर्स थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो इस बात को डिनाई नहीं करते। रिचर्ड डॉकिंस कहता है गॉड डिल्यूजन में कि देयर इज नो गुड नो बैड, no right, no wrong, nothing but pitiless indifference. तो वो मानते हैं इस बात को, ये सारा जो है दुनिया के अंदर मीनिंग और राइट और रॉन्ग, ये सारा ऐसी चीज है,
ये सब ये आपने दिया हुआ है, रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवली आप इसको कुछ
फनी चीज ये है कि वो गॉड के लिए हमेशा कहते हैं कि गॉड को साइंटिफिकली फॉल्सिफाइबल होना चाहिए, कि तुम बिलीव करते हो कोई टेस्टिंग पॉसिबल होनी चाहिए जिससे फॉल्सिफाई किया जा सके, वरना क्या। मल्टीवर्स जो है वो फॉल्सिफाइबल नहीं है, अब कभी नहीं कोई बंदा प्रूफ नहीं कर सकता कि है कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है,
बिल्कुल
ये नहीं कि करंट मशीन
सिमुलेशन के लिए भी यही
पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रूफ कर सकते हैं, अगर हमारे यूनिवर्स से बाहर भी यूनिवर्सेज हैं, लेकिन उसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो अल जजीरा पे यही आया हुआ था डॉकिंस, वो कह रहा था कि मजाक उड़ा रहा था कि तुम लोग कहते हो तुम्हारा प्रॉफिट गया एक विंग्ड हॉर्स पे और वगैरह वगैरह, और किसी ने उससे क्राउड से सवाल पूछा, एक मशहूर क्लिप था, कि तुम इसका मजाक उड़ाते हो लेकिन तुम कहते हो कि खुदा नहीं है, उसकी जगह मल्टीपल यूनिवर्सेज हैं, और तुम मुझे वो यूनिवर्सेज शो नहीं कर सकते लैब में, प्रूव नहीं कर सकते, सुना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें तो मान लोगे। और उसने डिनाई भी नहीं किया, उसने कहा कि ये एक तरीका है टू गेट आउट ऑफ बिलीविंग इन गॉड, अदर देन दिस मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि क्योंकि यूनिवर्स डिजाइन लग रहा है कुछ एडवांस एलियंस ने बनाया हो।
हाँ, एलियंस का भी कॉन्सेप्ट
मैं ये नहीं मान लूंगा, एंटरटेन
करने एग्जैक्टली वो ये मान लेंगे कि एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन आकर इंसान को बनाकर जा सकती है, लेकिन एक खुदा की वाहिद हस्ती जो कि किसी के तहत नहीं है, हर चीज उसके मातहत है, वो बनाए।
और अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं मतलब वो एक सिविलाइजेशन है, तो इसके मतलब कि एक और सिविलाइजेशन एलियन की भी एग्जिस्ट करती है, और हम उनकी टेरिटरी में, उनकी जंग होनी चाहिए इस टेरिटरी के ऊपर कभी ना कभी।
बाय द वे ये कहते हैं कि जो सिमुलेशन बना रहा है ना वो इटसेल्फ गॉड उसे कहते हैं, यानी अगर हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएं कि हम सिमुलेशन बना सकें जो पूरी हमारी यूनिवर्स की तरह एक सिमुलेट हो रही हो, तो कहते हैं कि हमारी पावर्स वो उसको इक्विवेलेंट इक्वेट कर रहे हैं कि ये खुदा जैसी खुदाई ताकतें हैं। تو ان اے سینس وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کو بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایک ایلین پاور اتنی طاقتور ہو کہ وہ سیمولیشن بنا سکے تو وہ خدا ہے. خدا بس ایک خدا کی پاور اس کو بھی ختم کر رہے ہیں بیسیکلی اس طریقے سے.
ہاں اب وہی ہے لیکن اس میں وہی والا پیراڈاکس آ گیا کہ وہ کہیں گے کہ اس ایلین کو کس ایلین نے بنایا, اس ایلین کو
تو ایک آبویس انفینٹ ریگریس ہے. جو عقل مند ایتھیسٹ فلاسفرز وغیرہ بھی ہیں نا وہ یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی, یہ ایک ابسرڈ انفینٹ ریگریس ہے جو پاپولر ایتھیسٹ جو
اپنی قبر کھودنے والی بات ہے ان کے لیے
کراس کی طرح قبر مارتے ہیں, کراس کی طرح کے یہ کلیئرلی ابسرڈ ہے.
بہت
تو یہ صرف اس سے تو یہ پتا چلا ہے مجھے, جو کنکلوژن میرا ایٹ لیسٹ جتنا بھی میں نے دیکھا یہ کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمیولیشن ملٹیورس یعنی یہ ساری تھیوریز جتنی بھی آ رہی ہیں کہ دس از آل یعنی عروج کہ بس میں نے خدا کو نہیں ماننا باقی کچھ بھی ہو جائے میں مان لوں گا. میں اے آئی کے حوالے سے بھی جو اپنے جو تھیوریز ہیں وہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اے آئی یعنی ہم پروپوز کرتے ہیں, جبکہ یہ بھی ایک اس پہ بھی کافی اسکالرز لکھ چکے ہیں کہ اے آئی وہ والی کانشیسنیس یا سینٹینس اچیو کر سکے جو کہ ایک انسان کی ایک مت ہے یعنی کہ اے آئی اس لیول پہ پہنچ سکے, لیکن ہم اس مت کو انٹرٹین کرنے کے لیے صرف اس لیے تیار ہیں کہ ہم اس سے ہمارا وہ پروو ہو جائے گا کہ خدا کی ایگزسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ ایک چیز جو ایکسپلین کر رہی ہے سب چیزوں کو, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اتنی ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن کے ذریعے آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکیں. Just because of your theory,
اگر آپ خدا کے اندر یقین کرتے ہیں خدا کو مانتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس خدا نے کسی طریقے سے آپ تک پیغام بھیجا ہوگا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے کیا آپ نے کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ سم ہاؤ ریلیجن کی طرف جائیں گے.
بالکل
کچھ مورالٹی ایگزسٹ کرتی ہے, کچھ نہ کچھ
آپ کچھ
حق اور غلط کے بیچ میں فرق ہے,
کچھ آبجیکٹو مورلز ایگزسٹ کریں گے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا. اور پھر آپ نے وہی والی بات نہیں
کہ زندگی کا مقصد ہوگا یعنی
اور آپ اپنی ویلیو اسی بیسس کے اوپر دیں گے نا, اپنے آپ کو ویلیو انسان پھر اسی بیسس پہ دے گا کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں. اچھے خاصے جو آج کل جو نظر آتا ہے کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے, میری کہہ لیں میری یو کین یو آر مور دین فری ٹو یعنی ڈس ایگری کہ اٹ از اے ویری ایزی وے آؤٹ کہ ہم اگر ڈینائی کر دیں تو ہم اس مورل اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں, کوڈ سے کو بھی ہم ڈینائی کر سکتے ہیں اس مورل کوڈ سے جب باہر چلے گئے, جو ایک انسان کے اندر سے وہ گلٹ فیکٹر بھی ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو ویلیو اور اپنی ورتھ ہی نو لانگر وانٹس ٹو ڈیفائن ہز اون ورتھ اور ویلیو بیسڈ آن جو کہ وہ مورل کوڈ جس کو وہ فالو کر رہا تھا جس سے اب وہ اگری نہیں کرتا. تو یہ ایک اس لیے بہت سارے لوگ اپنی ایگو یا جو بھی ہے اپنی سیلف ورتھ ویلیو کو وہ ریکنسائل نہ کرنے کی وجہ سے کہ بجائے کہ ریکنسائل کریں وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کوڈ کو.
صرف ایک مووی کی اس پہ ہم نے اتنی بڑی ڈیبیٹ کی اور ویسٹ جیت رہا بھی یہیں پر ہے کہ ان کو نیریٹو اپنا پیش کرنا آتا ہے اور ہم لیگ کر رہے ہیں اس چیز میں,
یعنی ایک ابزرڈ نیریٹو آف ملٹی ورس اینڈ سیمولیشن اور یہ
وہ کچھ بھی کرنا, وہ صحیح طرح پریزنٹ کر رہے ہیں لوگ بائے کر رہے ہیں اور ہم اس کا جو ہے فائٹ بیک نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی. کوشش کر رہے ہیں, یہاں سے بھی کوشش کر رہے ہیں. خیر اپنا جو لوگ سن رہے ہیں ہیومنس اینڈ مشین, اگر یہ فیوچر میں یہ ہو جاتا ہے سب کو مشین میں سننے تو
مشین سن رہی ہیں لیکن وہ کمیونٹی
میں فیڈ بیک نہیں دے رہا,
فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے, لیکن
تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ جس طرح ہم نے میٹرکس پہ ڈسکشن کی, اگر آپ کو کوئی اور مووی ایسی لگتی ہے ڈیپ جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اچھی ہیلدی تو وہ بھی ریکمینڈ کر لیں, لائک کریں سبسکرائب کریں اور جو ہے پلیز شیئر بھی کر لیں تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں. اسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ چوک سے سلام. نہیں انٹرنیٹ کنیکشن ہے.